नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमात् कृष्णः प्रीतमना पशो रेमे संचारयन् अग्रह सरिद्रोदसुसानुगः विष्णः प्रीतमना पशु रेमे संचारयन् अग्रहे सरितरोध सुसानुगः
कृष्णः प्रीतमनः पशु रेमे संचारयन् अग्रे सुसानुगः श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमात् कृष्णः प्रीतमनः पशुं रेमे संचारयन् अग्रे सरिद्रोधस्तु सानुगः
बिजली की बीमारी दूर की जा रही है कब से चल रही है श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार वृक्ष आदि की प्रशंसा करते हुए वृंदावनम वृंदावन में श्रीमद जो अतिशय सुंदर है कृष्ण कृष्ण प्रीत मन आनंदित मन से पशुओं को संचारयन चलाते हुए रे में विहार कर रहे थे। अग्र है गिरिराज गोवर्धन जी के सरित सरिता मानसी गंगा रोधासुर तटों में सानुगह अपने सखाओं के साथ श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन विहार का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं एवं प्रीत मन कृष्ण श्रीमद वृंदावन पसुन संचारयन लेने। ये श्रीमत शब्द वृंदावन के लिए है और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है। वृंदावन श्रीमत है श्री से युक्त सब प्रकार का सौंदर्य फल फूल आदि से युक्त है वृक्षों से पक्षियों से पशुओं से और विशेष करके भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण उसकी शोभा में और उत्कर्ष हो गया है। तो श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न है। प्रीत मना प्रीत का अर्थ प्रसन्न मना मन वाले भगवान का मन बहुत प्रसन्न हो रहा है वृंदावन को देख करके पक्षियों को वृक्षों को भावरों को और पशुओं को हरिण आदि को और बगों को चरा हर देख करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो बहुत प्रसन्न चेत से वे इस प्रकार वृंदावन रहेंगे वृंदावन में रमण कर रहे हैं। पशुन संचारयन पशुओं को चराते हुए संचारयन का अर्थ बहुत अच्छी तरह से चरा रहे थे विहार तो कर रहे थे तो उनका अपना काम है लेकिन पशु चराना उनकी ड्यूटी थी उनका कर्तव्य था। तो भगवान पशुओं को चराते हुए रे में संचारयन रे में पशु संचारयन रे में पशु चराते हुए रमण कर रहे थे। तो रमण ही मुख्य है इसमें भगवान का मन रमा हुआ है। कहाँ चरा रहे थे पशुओं को और कहाँ रमण कर रहे थे अद्रे है अद्री के पर्वत के सरित रोधस पर्वत की जो नदी है एक वचन में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं पर्वत से गिरिराज गोवर्धन जी का बोध हो रहा है। गोवर्धन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मानसी गंगा। झरने तो बहुत निकलते हैं गिरिराज से लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध नदी निकलती है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सरित रोधस अद्रे सरित रोधस पर्वत के गोवर्धन के नदी के तटों पर अपने अनुगामियों के साथ पशु चराते हुए विहार कर रहे हैं। गिरिराज जी के साथ ही और भी पर्वत हैं ब्रज में जिन पर भगवान ने गोचारण किया विहार किया उनके गुफाओं में एक एक कण एक एक पत्थर या एक एक ब्रज ब्रज का परम महिमामय है। वास्तव में भगवत स्वरूप है गिरिराज जी। गिरिराज जी के दो स्वरूप हैं एक विष्णु स्वरूप और दूसरा वैष्णव स्वरूप। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा गिरिराज को ही गिरिराज धरण कंकन कहते हैं भेद नहीं जानते। गिरिराज महाराज की पूजा विष्णु के रूप में की जाती है। इसका कारण यह है कि वास्तव में विष्णु स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण पूजा करा रहे थे ब्रजवासियों से, उन्होंने सोचा कि यदि गिरिराज जी प्रकट हो करके पूजा नहीं लेते हैं तो ये ग्वाले सब हमारा बहुत विरोध करेंगे। जैसे इंद्र पूजा नहीं ले रहा था, ऐसे ये भी नहीं ले रहा है, विशेषता क्या है? तब स्वयं भगवान ही कृष्ण ही एक विशाल पर्वत के रूप में बैठे और उनका हाथ चल रहा था, मुंह चल रहा था, आंखें चल रही थी। और इधर से कहते हैं, अभी गोपो देखो गिरिराज जी बिल्कुल प्रकट हो गए, प्रकट हो रहे हैं। इंद्र कभी आया है तुम्हारा भोजन करने के लिए? कभी नहीं आया। वो अभिमान में रहता है, कोई देवता है, मनुष्यों के हाथ का भोजन नहीं लेता है। लेकिन देखो गोवर्धन जी कितने दयालु हैं, हम लोगों का दिया हुआ उपहार खाने के लिए तैयार हैं। दो परसों परसों और लोग बहुत बड़े बड़े बर्तनों में परोस रहे थे और गिरिराज जी एक एक कौर में एक एक टन खाते जा रहे हैं, खूब खाते मुखार बिंद अन्य और ज्योति पुराण मुखार दिन में। गिरिराजी तो ऐसे विशाल पर्वत के रूप में है, लेकिन जहाँ खा रहे थे तो मुख चल ही रहा था, जहाँ तो मुंह सब था और एक एक कौर में कितना खाना लगे। कभी कभी लीला में ब्रज में दिखाते हैं लोग, रासलीला वाले, जब गिरिराज जी खाने लगे तो कुछ गोप कृष्ण से कहते हैं, अरे कैसा देवता पूजा है, ये सब खा जाएगा, हमको छोड़ेगा नहीं क्या? ऐसे देवता की पूजा हम लोगों से नहीं हो सकती है। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा कवर लगा रहा है, ये खा रहा है, हम लोग इतने दिन से परेशान है पूजा में और भूख लगी है तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से जितना प्रसाद परसा गया वो सब खा गए कृष्ण, और फिर भी सब बचा रहा। पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, और खूब प्रसाद बांटा ब्रजवासियों के बीच में। तो इस तरह से गिरिराज खा रहे थे तो वहां सिद्ध होता है कि ये विष्णु स्वरूप है। श्री गोपीजन कहते हैं, हमताय मद्र रगला हरिदास वर्ण जिंदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानन तनो के सहगो गणेश पानी यशुवस कमल कंदम। अरे सखियों, ये जितने भी वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के सेवक हैं, उनमें सबसे अग्रणी हैं गोवर्धन। कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श पाठ करके इनको पुलक होता है, आंसू आता है, झरनों के रूप में रोते रहते हैं और गौओं को सम्मानित करते हैं, गौओं को घास देते हैं और गोपों को कृष्ण बलराम आदि को गुफा देते हैं और जड़ी बूटी देते हैं, सुयश कंदर कमंडल सुंदर पानी देते हैं, मिनरल वाटर देते हैं। गिरिराज जी देखो निकल रहा है सब, ये हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव राज है, वैष्णव शिरोमणि गिरिराज जी, इसके साथ साक्षात विष्णु है भगवान कृष्ण के स्वरूप। ये गिरिराज जी की दो तरह से पूजा की जाती है। ऐसे गिरिराज जी की घाटियों में और विशेषकर मानसी गंगा के तटों पर विहार कर रहे थे और गौ चला रहे थे। पहले ऐसा वर्णन आता है कि मानसी गंगा जी गिरिराज गोवर्धन से निकल कर कुछ दूर तक बहती थी। कालक्रम से ऐसा समय आ गया है कि अब इनकी धारा बाहर नहीं जाती है, उन्हें कुंड जैसा है, पहले बहती थी कुछ दूर तक। तो उसके दोनों तटों पर श्री कृष्ण लीला करते थे और गाय चराते थे, शरीर गोधन से स्नान कर। तो किस प्रकार से रमन कर रहे थे अब श्री वसुदेव गमन करते हैं। कोचित गायत गायत सुम बगांधाले स्वनुप्रत ही उपगीयमान चरित सरसरी संकर्षणामृत। कभी कभी श्री कृष्ण भंवरों के स्वर में स्वर मिला करके गा रहे थे। क्वचित गायती Gayatsu, Madan Halisu, Madan Alisu. मद से अंधे बने थे अविभाव रहे वृंदावन के फूलों के पराग को पी करके बिल्कुल मतवाले थे मत थे मत का अर्थ है बाह्य स्मरण शून्य केवल कृष्ण भावना में डूबे हुए थे कोई बाहरी सुख दुख का अनुसंधान नहीं था उसको मदान कहते मद का अर्थ सुख है सुख से अंधे थे भौरे वृंदावन के दिव्य पुष्पों के सुगंध ले रहे थे और मधु भी ले रहे थे इसे बहुत प्रसन्न थे वे बहुत प्रसन्न इसलिए भी थे कि वृंदावन के पुष्पों पर बैठे हैं जिन पुष्पों को भगवान लेकर के खोजते थे और उन वृक्षों के फूलों को पराग को पी रहे हैं भौरे मदान है विभोर है आनंद में वे गा रहे हैं गायत्सु अलसु गा रहे गुनगुन गुनगुन जैसा भगवान ने पहले कहा था कि ये भौरे भौरे नहीं है ये आपके भक्तों में सबसे मुख्य हैं श्री बलराम जी से कहा था भगवान और ये आपका अखिल लोक तीर्थम जस हो गया ये आपका जस गा रहे हैं जो आपका जस सभी जीवों के पाप को नष्ट कर देता है उनको तार देता है भावों को एक पूरे श्लोक में भगवान ने बताया और वृक्षों को और बाद में एक श्लोक में कई कई चीजों का वर्णन किया कई कई जीवों का वर्णन किया चार श्लोक बोले थे भगवान यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस तरह से रमण कर रहे थे किस तरह से सुख लुप्त हुए थे भगवान भावों के स्वर के अनुसार वो भी गा रहे थे अगर भावरे गाते हैं भन 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 आवाज आती है तो श्री कृष्ण ही उनकी नकल कर रहे थे वो स्वर में स्वर मिला कर गा रहे थे गायत्सु अलिसु क्वचित गायती क्योंकि भंवरों के साथ स्वर मिला कर गाते रहे ये वृंदावन भगवान का अपना खास निवास स्थान है और यहाँ पे बिना संकोच के और बिना किसी संभ्रम के और बिना किसी ऐश्वर्य प्रकाशन के वे अपने माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं गा रहे हैं बच्चा की तरह जैसे बच्चे गाते हैं कभी कभी कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं कुह हो तो कभी बच्चे बोलते हैं उनके मधुर कंठ से कोयल भी प्रभावित हो जाता है और सोचता है कोई दूसरा कोयल गा रहा है तो और जोर जोर से गाने लगते हैं श्री कृष्ण गाने में जो अनुकरण कर रहे हैं सबसे अधिक भंवरों का अनुकरण कर रहे हैं इसीलिए प्रथम निपात है पहले उनका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं क्वचित गायति गायत्सु मदान्धा लिस अनुव्रते और भगवान के जो अनुव्रत है सखा है वे लोग भी भंवरों के स्वर में स्वर मिला कर गाते हैं कभी कभी श्री कृष्ण चलते हैं तो किसी पुष्प पर जैसे वृक्ष पर लता पर भंवरे बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे सामने तो सखाओं को कहते हैं देखो ये कितने गा रहे हैं ऐसे कौन गा सकता है तो सब लोग गाना चालू करते हैं सब लोग गाने लगते अनुव्रत ही सह गायती कुछ अपने अनुगामियों के साथ अपने सखाओं के साथ वे गाने लगते हैं उपगीयमान चरितः स्वगी संकर्षणानुत अथवा अनुव्रत ही उपगीयमान चरितः अपने सखाओं के साथ भगवान की कीर्ति गाई जा रही है तो सखा सब श्री कृष्ण के बारे में गा रहे हैं और श्री कृष्ण भंवरों की नकल कर रहे हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य लीला आदि को तुरंत भक्त गा रहे हैं गाना और नाचना यही मुख्य है वृंदावन में गाना और नाचना भक्ति में अगर गीत न हो और नृत्य न हो तो उसमें और वेदांत विचार में कोई अंतर नहीं भगवान को खूब पूजा की जाए भगवान की पूजा की जाए भोग लगाया जाए शंख बजाया जाए कभी गान नहीं कभी नाच नहीं तो निराश है वास्तव में स्वयं भगवान ही ऐसे हैं श्री कृष्ण जो सदा गाते रहते हैं और नाचते रहते हैं चलते हैं तो सीधा साधा नहीं चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं और गाते हुए बोलते हैं। किसी को बुलाना भी है तो गान जैसा बुलाते हैं, बांसुरी से काम चलाते हैं सब जगह। कहीं भी किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, किसी को गाली देना है बांसुरी में, तो बांसुरी से ही सब काम देते हैं। दे गले हो श्याम बसुरिया में गा रही है, भोजपुरी में गीत गाते हैं, बसुरिया में गा रही, उंगरबिया में गा रही, दे गले हो श्याम बसुरिया में गा रही। किसको क्या गाली दिए, किसको क्या किए, ऐसे किसी ने गगरी भोले कभी कुछ किए, सब गाए जाते हैं। तो भगवान गान के कितने शौकीन हैं, कितना उनको गीत पसंद है कि हमेशा गाजा लिए रहते हैं। कहीं अगर बांसुरी इधर उधर क्षण भर के लिए हुई तो बेचैन हो जाते। एक बार श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया, कुछ पता नहीं लगता था कि कौन लिया है कौन लिया है, लेकिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किया था तो उस अनुमान से श्री कृष्ण समझ गए कि उन्होंने लिया। वो विनय करते हैं, राधे श्री वृषभान दुलारी प्यारी बंसी दी जय मो, हे वृषभान बाबा की पुत्री प्यारी राधे हमारी बंसी दे दो। राधे श्री वृषभान दुलारी प्यारी बंसी दी जय मो। फिर कहते हैं कि बंसी के बिना मैं कैसे गाय चला सकता, बंसी के बिना मैं गाय नहीं चला सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता, बंसी मुझे प्राणों से प्रिय है इसलिए हमें दे दो। तो राधा रानी कहती हैं, कैसी बंसी श्याम तिहारी, हमने नेकन नैन निहारी, तुम छलिया हम भोरी भारी, झूठो दोष लगावे लाला बन में खोई हो। राधा रानी कहती कैसी बंसी, हमने तो कभी भी एक क्षण के लिए भी आपकी बंसी देखा ही नहीं है। कैसी बंसी श्याम तिहारी, हमने नेक नयन निहारी, और हम तुम छलिया हम भोरी भारी, तुम कपटी हो, हम लोग भोरी भारी हैं, इतने क्यों झूठे दोष लगा रहे हो, अरे वन में कहीं खो गई होगी जाकर तो वहां ढूंढो, हमने नहीं देखा है बंसी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने बंसी लई हमारी, तुमने बंसी लिया है, तुमने बंसी लिया है। और आगे वो कहा था, पूरा पद याद नहीं, कैसे समझूं भोरी भारी, तुम भोरी भारी हो, तुम भोली हो, तनक दही के कारण वादिन गारी देनी मां, थोड़ा सा दही में खा लिया था तो तुमने गाली दिया था ना, तुम भोरी भारी हो। हाँ, तुम सब चतुर सुधर ब्रज नारी, तुमने गई बंसी हमारी, कैसे समझू भोरी भारी, तनक दही के कारण वादिन गारी दीनी मोह, थोड़ा सा दही ले लिया तो कितना कितना भद्दा गाली तुमने दी, और तुम भोली भाली बनती हो। तुम्हारे पास हमारी बंसी है, दो दो दो। इस तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी में संवाद हो रहा है बंसी से। थोड़ी देर के लिए बंसी इधर उधर हो जाती थी तो कृष्ण बेचैन हो जाते थे, बंसी वादन ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे मुख्य कार्य है। इसी के द्वारा कोई भी विहार करते हैं, इसी के द्वारा गाय चराते हैं, सखाओं को बुलाते हैं, गौओं को बुलाते हैं, गोपियों को बुलाते हैं रास के लिए, बंसी के बिना वो फीका लगते हैं। हमने देखा है जो लोग श्री कृष्ण के छोटे से विग्रह को रखते हैं, माखन हाथ में रहता है, फिर भी एक बंसी पकड़ा देते हैं, जो कि बंसी और माखन खाते हैं, बंसी बजा नहीं सकते, लेकिन उनको बंसी एक छोटा सा रख दिया जाता है। बाल गोपाल जी को बंसी रखते हैं। हम तो हाथ पर ही गंजा बना करके बेचने वाले बेचते हैं। भगवान का इतना संबंध है बांसुरी से, उसी को बजाते हुए रमण करते हैं। पहले वर्णन किया गया है, तो गाते हैं भावों के साथ गाते हैं, गुनगुन गुनगुन गुनगुन, जो भी जिस राग में गाते हैं। और इनके कीर्ति का गान इनके अनुग्रह कर रहे हैं, इनके सखा गान अनुग्रह ही उपगीय मान चलता श्रगरी और बहुत सुंदर माला पहने हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में क्षण क्षण में नई नई माला पहनते रहते हैं। वृंदादेवी की व्यवस्था है पूरे वन में, और जो माया की व्यवस्था है, सर्वत्र नई माला प्रस्तुत की जाती है। और श्री कृष्ण माला बहुत चाव से धारण करते हैं, इसीलिए अगर वनमाली कहा जाए तो उसका मतलब है श्री कृष्ण। वन की माला, फूल की माला तो सभी पहनते हैं, भगवान विष्णु भी पहनते हैं, भगवान राम भी पहनते हैं, जो लोग पहनते हैं, लेकिन वनमाली अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण का ही बोध होगा उसे। तो उनको श्रगणी कर, श्रग का अर्थ है माला, और श्रगणी मतलब मालाधारी, माला पहनने वाला। एक घंटे में सैकड़ों माला पहनते हैं, जहाँ तहाँ सब लोग पहनाते हैं। गोपियाँ बना करके माला लाती हैं, वन में पहनाती रहती हैं। और लोग माया गंगा देवी की व्यवस्था से संसार में माला पहनते रहते हैं, और उन मालाओं को भक्त लोग एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं किसी भगवान को माला बहुत दुर्लभ होती है। भगवान कृष्ण को भी विदेश में माला बहुत कठिनाई से मिलती है। लोग माला नहीं बनाते हैं, इसे गुच्छा सजा करके बेचते हैं दुकानों पर। लेकिन वृंदावन में, भारत में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रचुर मालाएं दिखती हैं, सबसे ज्यादा वृंदावन में। बहुत से लोग घर करके लाते हैं, भगवान को पहनाते रहते हैं। दिन में तो हजारों माला कृष्ण पहनते हैं एक एक मंदिर में। घर के भी है जी बहुत पहनते हैं, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर जी भी बहुत पहनते हैं। श्रगणी माला वाला, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रगणी, इसलिए कह रहे हैं कि नई माला पहनाई जा रही है बहुत सुंदर, इसलिए स्पेशल कहते हैं माला वाला, माला वाला कुछ। और संकर्षण अन्वित श्री बलराम जी को भी सब माला पहनाए जा रहे हैं। संकर्षण के साथ, संकर्षण से युक्त श्री कृष्ण कभी कभी भंवरों की बोली का अनुकरण करते हैं। क्वचित च कलहंसानां अनुकूजति कूजितः, क्वचित कभी कभी श्री कृष्ण कलहंस कूजते हैं, जैसे बोलते हैं, तो उनकी बोली का अनुकरण कर रहे हैं। क्वचित च कलहंसानां अनुकूजति, अनुकूजन करते हैं उनके कूजितम का, उनके बोली का अनुकरण करते हैं। और अभिनृत्य के नृत्यंतम वर्णन हास्य क्वचित, कभी कभी अपने सामने नाचते हुए मयूर के साथ नाचने लगते हैं। वर्णन हास्य क्वचित, इतना सुंदर हम नाचते हैं श्री कृष्ण, इतना नाचते हैं कि मोर भी लज्जित हो जाता है, हास्य उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या नाचोगे, मानो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे सामने क्या नाचोगे। सुंदर नृत्य करते, नृत्य और गीत में भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। जब सांप के 101 फण पर भी नाच रहे थे, तो ऐसा नाच वास्तव में कोई नहीं कर सकता। नटवर श्री कृष्ण को कहते हैं, नटराज भगवान शिव को कहते हैं। शिव जी भी नाचने में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनका नाच इतना भयानक होता है। वो नृत्य स्पेशल प्रलय के समय करते हैं, प्रलय के समय नाच करते हैं। भागवत में लिखा गया कि जो चार हाथी हैं इस विश्व की रक्षा करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने रखा है, जिनको दिग्गज कहते हैं, उन चारों हाथियों को भगवान शिव अपने त्रिशूल में से पिरोलते खो खो करके उसको मारते, वो भी एक ही त्रिशूल में चारों को खोल लेते और उन चारों को उठा करके और तांडव नृत्य करते, बहुत भयावह नृत्य होता है, हैं बहुत प्रवीण है, इसलिए इनको नटराज कहते हैं। और ऐसे भगवान के कीर्तन में भी नाचते हैं, पर प्रलय काल में असली नृत्य उनका होता है। और श्री कृष्ण तो सब समय नाचते रहते हैं, गाय चराने में जाते समय नाचते हैं, गौएं उधर चरती हैं तो बच्चों के साथ सखाओं के साथ नाचते रहते हैं, फिर मयूर के साथ नाचते हैं, हमेशा नाचते रहते हैं। और गोपियों के साथ रास बिहार में भी नाचते हैं, वो तो अलग ही नृत्य है। समस्त कलाओं के साथ राग ताल स्वर के साथ भगवान नाचते रहते हैं। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि कभी कभी बरहिणम हासयम, बरहिण मतलब मयूर, मयूर के साथ नाचते हैं तो हासयम, कभी कभी तो ऐसा सुंदर नाचते हैं कि मयूर लज्जित हो जाता है। और मानो टीका में बात कही कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आओ नाचो और मैं नाचता हूँ, तो वो क्या नाचेगा बेचारा, भगवान हमेशा उसको मात कर देते हैं, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। मेघ गंभीर या वाचा नाम भी दुर्गान पशु क्वचित आह्यति प्रत्या गो गोपाल मनोज्ञया। और कभी कभी श्री कृष्ण दूर गए हुए दुर्गान पशु, दूर गए हुए पशुओं को बुलाते हैं, उनका नाम रख करके। भगवान के प्रत्येक गाय का नाम है, सब कुछ का नाम होता है। जैसे भगवान विष्णु के धनुष का भी नाम है, गदा का नाम है, शंख का नाम है, जैसे शंख का नाम है पांचजन्य, गदा का नाम है कौमोदकी, और धनुष का नाम है सांग सांग, सब चीज का नाम है। रथ में जुटे हुए अर्जुन के घोड़ों के सबके नाम, भगवान के घोड़ों के नाम बरकर, सबका नाम होता है, बहुत सुंदर सुंदर नाम होता है, एक भी अंग्रेजी नाम नहीं होता सब संस्कृत में नाम होता है। भगवान के भी हजारों नाम हैं, मेरे गांव में कहते हैं कि हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम तो हरि तो उन्हीं को कहते हैं, लेकिन जब तुकबंदी में कहते हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, बहुत नाम है। जितने भक्त हैं भगवान के ब्रज में या ऐसे चाहता हूँ, सब अपने लिए स्पेशल नाम रखते हैं। बंगला में पद है, किसने क्या नाम रखा, किसने क्या नाम रखा, किसने क्या नाम रखा। राधा रानी ने नीलमणि नाम रखा, जसोदा ने कन्हैया, जो भी लाला, और कोई कोई नाम रखे माखन चो सीधे खुश होते थे। कभी कभी नाटक करते थे कि हमको चोर बना रहा है, लेकिन प्राय प्रसन्न होते थे। कंदहुते मीठो नाम मेरे प्यारो माखन चोर, भगवान गाते हैं मेरा माखन चोर नाम मुझे बहुत प्रिय। और कोई जगन्नाथ कहे, जगत पालक कहे, विष्णु कहे, ठीक है, लेकिन हमको पसंद है माखन चोर नाम, भगवान को बहुत प्यार से चोर कहा जाता है, चाहे माखन चोर कहा जाए, चाहे मनमोहन कहा जाए, मन के चोर, भगवान को ये सब बहुत प्रिय है नाम, उनके बहुत से नाम है। तो गौओं का नाम भी क्वचित आ हो जाती, नामों से पुकारते नाम, गाय का नाम बोलते हैं बांसुरी में दौड़ करके आ जाती है, कभी बांसुरी में बुलाते हैं, कभी डायरेक्ट बुलाते हैं। भगवान का जो कंठ स्वर है वो मेघ के समान होता है, एक जगह से बोले में तो कई किलोमीटर में सुनाई पड़ता है, जैसे बादल आकाश में बोलता है तो बहुत दूर तक सुनाई पड़ता है, इस तरह भगवान की आवाज कंठ स्वर। कल गौओं को बुलाते हैं, नाम रखकर हे धौली, हे शामली, हे गंगे, हे जमुने, इत्यादि नाम है भगवान की गौओं का, इनको बुलाते हैं। भगवान के इस आह्वान को शब्द को सुन करके ये तुरंत दौड़ करके आ जाती है, बहुत प्रिय लगता है। और शायद किसी से गौएं कभी कभी जान बुझ करके दूर चले जाती हैं कि श्याम सुंदर हमको बुलाए हैं, मान देता, इसलिए भी वो लोग दूर चले जाते हैं। एक प्रश्न उठाया गया है कि तो दूर क्यों जाती हैं भगवान को छोड़ करके, तृण के लोभ से नहीं है, तृण के लोभ से नहीं जाती हैं, वैसे दूर जाती हैं जब वो अच्छा से चलती हैं तो कृष्ण को बहुत सुख होता है, तो कृष्ण को सुख देने के लिए वो चलती हैं, लेकिन कृष्ण उनका नाम पुकार है इसके लिए वो दूर चल जाती है। और श्री कृष्ण लीला करके नाम पुकारते हैं, गो गोपाल मनोज्ञया, वो गौओं के लिए और गोपों के लिए भगवान के मुख की आवाज उनके कंठ से बहुत सुंदर लगता है, ये चाहते हैं कि हमारा नाम बुला, हमारा नाम बुला, हमारा नाम बुला, वो बोले बहुत प्रिय। श्री कृष्ण इस तरह नाम ले लेकर के पुकारते हैं, दुर्गम कृष्ण जो दूर गए हैं उनको। हमने कुंभ मेला में देखा है इलाहाबाद में कुछ लड़के अपना नाम बुलवाते थे जाकर, तो जो मंच होता है जहाँ से अनाउंस करते हैं तो अपने मित्र का नाम रख करके कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ, तुम कहीं भी हो यहाँ आ जाओ, तो अपना नाम आवे माइक में, इसके लिए अपना नाम बताते थे। ये लड़का भूल गया है, आप इसका अनाउंस कर दीजिए। स्वयं वही लड़का कह रहा है अनाउंस करने वाले से कि इस नाम के लड़के को बुलाइए। जब उसका नाम बोला जाता है मेला में तो बहुत खुश होता है, फिर हमारा नाम बोला जा रहा है। तो सामान्य मित्र के द्वारा भी या अनाउंस करने वाले मेला अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा भी कोई अपने नाम को सुनकर प्रसन्न होता है, तो साक्षात आनंद घन भगवान किसी को नाम लगा कर बोला उसको कितना अच्छा लगता है। तो बार बार बुलाते हैं, बार बार गौएं जान बूझ करके ट्रिक करती हैं कि दूर चले जाते हैं, कृष्ण हमको पुकार, तो पुकारते हैं। भगवान का पुकारना गो गोपाल मनोज्ञया, गौओं और गोपालों के लिए बहुत मधुर लगता है, मनोहर लगता है। चकोर कंच चक्रावह भारद्वाजं सबर्हिणः अनि अनुरवतेस्म सत्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयः। कभी कभी श्री कृष्ण क्या लीला करते हैं, जैसे पक्षी उच्च स्वर से बोलते हैं, चकोर क्रंच और चक्रा चक्रा और भारद्वाज, ये पक्षी का नाम है, तो ये कभी कभी उच्च स्वर से बोलते हैं, तो श्री कृष्ण ही कभी कभी उच्च स्वर से उनके जैसे बोलते हैं, और कभी कभी भीतर डर जाते हैं। व्याघ्र सिंह है, बाघ और सिंह की आवाज सुनते हैं तो डर जाते हैं। जीवों के बीच में जैसे बहुत से जीव हैं, तो उनमें बाघ और सिंह है, तो जीवों के बीच बाघ और सिंह के बोलने पर जैसे और जीव डर जाते हैं, वैसे भगवान भयभीत हो जाते हैं। जो कोई सिंह गरजता था तो भयभीत हो जाते थे। वृंदावन में भगवान को सुख देने के लिए ही भक्त जन ही सिंह का रूप धारण कर लेते हैं, जो इच्छा में शरीर होता है, यह अभी एक आनंद है भय देना भगवान को, तो सिंह बनकर घर जा तो तुरंत भगवान छिपना चाहते हैं, कहीं ऊपर चढ़ना या भक्तों के साथ सखाओं के साथ हो जाना, तैयार हो जाना, कहीं निकट में सिंह है बाघ है ये खा जाएगा तो भागते, या वृक्ष पर चढ़ने की लीला करते भाग कर, अथवा अन्य सत्व अन्य प्राणी जब भागते हैं बाघ और सिंह के आवाज से, वे जैसे भागते हैं हरिण वगैरह, तो उस तरह से कृष्ण और बलराम भी अपने सखाओं के साथ भागते हैं, भागो 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 दूर चले जाए, इतना दिखाते हैं, दिखाते क्या है, भगवान को सचमुच भय हो जाता है, कोई नाटक नहीं है, यह भी भगवान की योग माया का चमत्कार है कि भगवान में भय का संचार होता है, जैसे मां यशोदा से भय होता है। साक्षात काल को भी भय देने वाले भगवान डर जाते हैं सिंह की आवाज से, बाघ की आवाज, और सखाओं के साथ भागते हैं, बलराम जी भी भागते हैं, भागो भागो भागो। कभी कभी तो ऐसा सुन जल्दी गायों को इकट्ठा करके भागो, आज खतरा है वन में। ये लीला करते हैं भगवान की, ये भय की लीला भी बहुत सुंदर है। और कभी कभी पक्षियों की बोली को उच्च स्वर से बोलते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुरौतिस्म सत्वानां भीतवत व्याघ्र सिंहयो, बाघ और सिंह से भयभीत जीवों की तरह भागते हैं, कई और अर्थ हैं। अथवा जीवों के बीच जैसे बाघ सिंह है तो उनकी आवाज से भयभीत हो जाते हैं। गाय चलाने वाले बच्चे या कोई भी व्यक्ति वन में कुछ भयभीत होते रहते हैं, भाई बाघ गरज रहा है तो किसी गाय को पकड़ सकता है तो हमको भी पकड़ सकता है, अगर तो इधर गरज रहा है तो गौरों को हटा कर उस दिशा में भागते हैं, इधर चलो उधर चलो। तो भगवान को सुख देने के लिए ही वृंदावन के सारे जीव हैं, तो इस तरह से भगवान को भय उत्पन्न करके उनको सुख देते हैं, ये लीला करते हैं। कभी कभी कुछ सब समय नहीं, लेकिन भगवान कभी कभी ये भय की लीला करते हैं। अब श्री बलराम जी के सेवा का वर्णन करें, श्री बलराम जी किस तरह कृष्ण सेवा करते हैं। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपोत्संगोपवर्धनं स्वयं विश्रमय अत्यार्जन पाद संवाहनादि, कभी कभी क्रीड़ा करते करते कृष्ण के साथ ही दंगल करते हुए या और बच्चों के साथ खेल खेलते हुए श्री बलराम जी थक जाते हैं। जो पूरे पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनका शरीर पूर्ण चिदघन है, चिदमय है, वे प्रभु थक जाते हैं बलराम। तो किसी सखा से भी अगर उसके साथ कुश्ती हो रही है और मान लीजिए वो बच्चा ऐसे फूट सो गया, फूट का मतलब पेट के बल से, और कहा था हमको जरा चित कर दो तो तुम्हें शक्ति है, तो श्री बलराम जी उसको उतार करने के लिए हार जाते हैं, उसको हटाते हटाते नहीं बता, बलराम जी को पसीना आ रहा, पसीना आ गया, थक गए, या कृष्ण के साथ लड़ने में जैसे तैसे लड़ने मतलब दंगल करने में कुश्ती में थक जाते हैं, तो थक करके वे कभी कभी लेटते आह बहुत थक गया, और वास्तव में थक जाते हैं भगवान। यह कोई नाटक नहीं है, ये समझना चाहिए भगवान की लीला सत्य है, ये थकते हैं, परंतु उनका थकना प्राकृतिक जगत में थके हुए लोगों की थकावट जैसा नहीं है, तो थक जाते हैं, थक करके देखते हैं भक्त देखते हैं कि अभी सोना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, तो कोई उनके सिर को ले लेता है अपने गोद में, वहाँ तकिया तो है नहीं और पलंग सलंग कुछ है नहीं, तो वृंदावन के पत्ता आदि तोड़ करके घास और तुरंत बिछान लगा देते हैं, श्री भगवान लगाते हैं श्री श्री बलराम जी के लिए, तो लगा करके कोई भक्त बैठता है गोद में ले लेता है उनके सिर को, सिर को धीरे धीरे सहना, और श्री कृष्ण पाद संवाहनम स्वयं विश्वमय अर्जन अर्जन अग्रजन अपने अग्रज को विश्वमयति विश्रमयति विगत श्रम करते हैं, उनकी थकावट दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? पाद संवाहन आदि भी भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज श्री बलराम जी के पाद संवाहन आदि करते हैं, चरण दबाते हैं, पंखा झलते हैं, पानी पिलाते हैं, गीत गाते हैं उनके लिए, कई प्रकार से श्री बलराम जी का परिश्रम दूर करते हैं, थकावट दूर करते हैं। यह भगवान की लीला की सुंदरता। यदि भगवान की हमेशा सेवा की जाए तो ठीक है अच्छा है, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि हम सेवा करें अपने भक्तों की, तो श्री बलराम जी की सेवा करें। स्वयं विश्रमयति, स्वयं का अर्थ है इसके दो अर्थ है कि अन्य किसी को सेवा के लिए नहीं कहते हैं, स्वयं करने लगते हैं, अथवा श्री बलराम जी कभी कहते नहीं है कि कृष्ण हमारे पैर दबाओ सेवा करो, और स्वयं करते हैं। और वास्तव में कहने पर कोई सेवा करे तो उस सेवा में कोई रस नहीं रहता है ना। कोई शाम को थका मंदा हो कहे ए चरण दबाओ, चरण दबाओ कितना देर दबाएगा। सागर में एक लड़का है, उसके पिता ने कहा कि हमारे चरण दबाओ, तो वो जान बुझ करके अपनी उंगली उनके घुटने में गड़ाने लगा, तो बस 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 हो गया, तुमको आता नहीं है। नीक गीत गाए न दरबार भर के जाए। कथा कहते हैं कहावत है कि अच्छा गीत नहीं गाऊंगा तो मैं राजा के यहाँ पकड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर कोई अच्छा गाएगा तो राज कर्मचारी उसको पकड़ कर ले जाएंगे और कहेंगे राजा के लिए गाओ। कहावत है कि नीक गीत गाए न दरबार भर के जाए, न मैं अच्छा गाऊंगा न दरबार में उनको कोई पकड़ कर ले जाएगा। वास्तव में इसमें कोई रस है ही नहीं। कोई किसी को कहे कि चलो चरण दबाओ सेवा करो तो फिर बेकार है, अपने आप ही कोई चरण दबावे इस प्रेम से तो उसमें रस आता है, व्यक्ति की थकावट तुरंत चली जाती है, स्नेह से थकावट चली जाती है, श्रद्धा से। तो श्री कृष्ण स्वयं बलराम जी की सेवा करते हैं, कभी बलराम जी कहे नहीं। पाद संवाहन आदमी, इसमें सबसे ज्यादा पहला है पाद संवाहन, चरण दबाना धीरे धीरे धीरे, पाद संवाहन सेवा में सबसे श्रेष्ठ सेवा यही है। श्री जी भगवान नारायण की हमेशा सेवा करते होते हैं, चरण दबाते होते हैं, उनको इसमें रस आता है। और भगवान बार बार कहते रहते हैं ठीक है हो गया हो गया, फिर भी उनको इतना रस आता है भगवान की सेवा में कि वो करते रहते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, जैसे रामायण वर्णन है कि श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की सेवा करते थे। कहत कथा इतिहास पुराने रुचि भजन जुग जान सिरानी, मुनि के साथ रह रहे थे जनकपुर, तो कथा कहते सुनते आधी रात बीत गई। आजकल के लोगों का भी तो आधी रात हो ही जाता है, लेकिन टीवी सीरी देखने में बिना मतलब के, ये भगवान की कथा आदि सुनने में कहाँ टाइम दिखता है, बहुत कम दिखता है। ये भगवान श्री राम लीला करके शिक्षा दे रहे हैं, कहत कथा इतिहास पुरानी, इतिहास महाभारत और भागवत आदि की कथा सुनते कहते आधी रात बीतते। तब मुनिवर जाय शयन तब किन्हीं, मुनि ने जाकर के शयन किया आधी रात के बाद, मतलब 12 बजे लगभग गुरु जी सोए, तो लगे चरण चापन दो उठाए। 12 बजे जब सोने चले तब दोनों भाई चरण दबाने लगे, बार बार मुनि आज्ञा दी रघुवर जाए शयन करते, तो मुनि बार बार आज्ञा दिए भगवान राम को, लक्ष्मण जाओ जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो लगभग 1 बजे भगवान राम सोए, और जब भगवान राम सोए तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे। तो मुनि पुनि प्रभु कह सो अहता, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण सो जाओ बहुत देर हो गई। तो वे लगभग 2-2.5 बजे चरणों को पकड़ करके ही पौ है सोए नहीं, लक्ष्मण जी सोए नहीं, बस पौ है बैठे ही रह गए, किसी तकिया को था नहीं। जैसे तैसे बैठे रह गए, और जगह सबसे पहले कौन उठे, लखन जी से विगत सुनी अरुण शिखा धुनिका रामचरित मानस के सब पद में, लक्ष्मण जी मुर्गे की बोली सुनकर तुरंत जग गए, उठे, जगे नहीं, जगे तो पहले से थे, उठ गए, अब 4 बज गया। पहले अलार्म घड़ी आदि नहीं थी, मुर्गे की बोली से लोग जग जाते। द्वारका में भी इसका वर्णन, भगवान श्री कृष्ण मुर्गा की आवाज सुनकर जग गए। लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम से जाए और विश्वामित्र जी से पहले जग गए लक्ष्मण भगवान राम, जो सबसे बाद में सोया था वो सबसे पहले जगा। लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे, उसके बाद भगवान राम जगे और गुरु जी कमजोर शरीर बूढ़े थे इसलिए वो बहुत बाद में जगे। उनका तो मंगलारती वगैरह फैल ही हो गया था। इस तरह से क्रम है, आधी रात तक कथा चली, कथा के बाद सोए और सभी जो भी जगना था 4 बजे से जग गए। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम से जाए, गुरु से पहले जागे, इसी से मैं करता है कि हमेशा पहले जागे। गुरु की सेवा करनी चाहिए, पानी रखना और भी तो जरूरी है, धरी धर्म सीखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन आजकल के शिष्य ऐसे हैं कि गुरु जी सारे प्रोग्राम में हैं, वो मस्ती से 8 बजे नहाते हैं और आकर के एक दंडवत मार लिए बस पूरा नौधा भक्ति हो। ज्यादातर आजकल के शिष्य ऐसे ही हैं। आप पूछिए, आप आज मंगलारती में नहीं उठे थे, कुछ ना कुछ बहाना, पेट दर्द है, सिर दर्द है, चक्कर आ रहा था, आज रात में नींद नहीं आई। इस तरह से बोलते हैं। यहाँ श्री बलराम जी का चरण दबा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इस पर सब बातें याद आ रही है। चरण दबा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कई तरह से सिर सहला रहे हैं। यह है आदर्श चरित्र भगवान श्री कृष्ण का। इन सबको भी कहना चाहिए, लोग बस गोपियों के साथ उनकी जो लीला है वही कहते रहते। ये सब भागवत में आ रहा है, गायतः नृत्यतः गायतो क्वापि वल्गतो युद्धतो मिथः, हस्तौ गृहीत्वा गोपालान हसन्तौ प्रशासनसत। कभी कभी दोनों भाई खड़े होते हैं एक साथ, कभी कभी दोनों भाई गाते हैं, दोनों गाते हैं स्वर में स्वर मिला करके, कभी होड़ भी लगती है कृष्ण गौरा में कौन अच्छा गाएगा कौन अच्छा गाएगा, तो भगवान से बीच करके जान बुझ करके हार जाते थे कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। तो श्री बलराम जी में और उनमें होड़ होती है गाने में, आलाप करने में किसका आलाप अच्छा जा रहा है और दीर्घ काल तक, तो गायता और नृत्य और नृत्य करने में भी कॉम्पिटिशन होता था। और कभी कभी बलगता का अर्थ है बहुत पैंतरा बदलना, तिरछी चाल से देख चलना, लीला करना, और युद्ध होता, कभी तो युद्ध करते थे, युद्ध कई तरह से करते थे, कुछ शाखाओं को इधर बांटते थे बलराम जी, कुछ को कृष्ण, और कहते थे हम उस राजा पर आक्रमण करेंगे, उसका राज जीतेंगे, तो खूब हाथ में तलवार जैसा या धनुष जैसा के पत्ता को ही ले लेते थे और तलवार का नाटक करते थे, इतना युद्ध करना है करना है, उधर से 10-20 रखा है, इधर से 10-20 और युद्ध मचता था केवल फूल से और पत्ता से युद्ध करते थे। करने में युद्ध तो करते थे, नकली युद्ध करते थे, लेकिन थकावट तो हो ही जाती थी, कभी युद्ध करते थे, कभी पैंतरे बदलते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे स्वयं, और गोप सखा सब देखते रहते थे घेरा बना करके दोनों भाइयों के इस प्रतियोगिता को, और वो ताली बजाते थे हा 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 हा, खूब अच्छा, कितना दिव्य दृष्टि दृश्य है, भगवान साक्षात नाच रहे हैं गा रहे हैं, और गोप सखा सब ताली बजा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, और बीच बीच में खूब अपने वस्त्र उड़ाते हैं। आजकल के लोग इन थर्ड क्लास के लोगों को ही टीवी वी पर देख करके और से अभिशाप करते रहते, खेल कूद देखते हैं। किसका खेल कूद देखते हैं? जिनको कभी देखना नहीं चाहिए उनको देखते हैं। भगवान खेल कूद कर रहे हैं, उसको कम से कम आप देख नहीं सकते तो पढ़ सकते हैं, और सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप देख रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम कृष्ण लीला। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं उनके मन को पूर्णतः कृष्ण में अभिनिविष्ट करने के लिए, उद्देश्य है। तो भगवान की लीलाओं का इस तरह से वर्णन कर रहा है। कभी कभी हसंत गोपों को हंसाते हैं, अथवा गोप जब नाचते हैं गाते हैं तो उनको हसंत कहते, उनका तिरस्कार से करते हैं, अरे क्या तुम नाचोगे, ये यह भी प्रेम अच्छा होता है। कभी हसंत और प्रशंसा तो करते, प्रशंसा करते थे, प्रशंसा करने में, और हंसी कैसे कृष्ण उड़ाते थे, या तुम ये मित्र तुम ऐसा गा रहे हो कि ऐसा तो चित्रवत गंधर्व भी नहीं गा सकते, या विश्वावसु भी नहीं गाएंगे, या उपवरण भी नहीं गाएगा, जो भी हो ऐसे वो बोलते थे। और जब पहलवानी में वो बच्चे कूदते थे कृष्ण के साथ या बलराम जी के साथ, तो श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, इतना शारीरिक बल आज तक सृष्टि में किसी को नहीं हुआ, बाप ही बाप, तुम्हारा तो हाथ भी सीधा नहीं हो रहा है, मैं हार जा रहा। इस तरह से कर तो बच्चे खूब ऐसे करके दिखाते। वास्तव में श्री कृष्ण को जो हराया थे वो क्यों नहीं पहलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे? श्री कृष्ण हार जाते थे, बलराम भी हार जाते थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, नाचने में, गाने में, युद्ध में, सब तरह से प्रशंसा करते थे, और कभी कभी हंसी उड़ाते थे, खूब व्यंग करते थे, तो बच्चे बिल्कुल रोने रोने जैसे होते थे। दोनों भाई कभी कभी बहुत व्यंग बोलते थे। किसी अपने शरीर वाले सखा को कभी कभी कृष्ण कहते थे, मेरा शरीर ऐसा है कि दिग्गज से भी मोटा है, धन्य है, बहुत खाए हो प्रसाद। तो वो सखा गाली देने लगता था, तो तुम्हारे घर का खाता हूं क्या, भगवान ने हमारा देह ही ऐसा बनाया है तो हम क्या करें। और वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप पानी भी पिलाइए तो घी का काम करेगा, और किसी किसी को घी के अंदर ही डाल दीजिए, रोज घी पिए फिर भी वो लकी उचम ही रहेगा, वो मोटा हो नहीं सकता। और जिसको मोटा होना है केवल पानी पीना तो दीजिए, घी का काम करता है, है कि नहीं है संसार में? तो श्री कृष्ण इस तरह से व्यंग करते थे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कभी प्रशंसा करते थे। अब श्री कृष्ण के शयन का वर्णन करना आराम का। क्वचित पल्लव तल्पेषु निरुद्ध संकर्षितः, क्वचित पल्लव तल्पेषु निरुद्ध संकर्षितः वृक्ष मूलाश्रय असेते गोपोत्संगो को वर्णना। कभी कभी श्री कृष्ण युद्ध करते करते थक जाते थे। खेल कूद भी एक युद्ध ही है वास्तव में। ये क्रिकेट का मैच होता है तो लगता है कि पूरा देश उसमें भाग ले रहा है, और कितना प्रभावित होता है एक छोटे से बल्ब के इधर उधर होने से, हाय हाय करने लगता है, और दूसरा दल आहा आहा करने लगता है, क्या हो रहा है। लेकिन भावना ऐसी है पूरा देश ही हार जा रहा है और पूरा देश जीत रहा है। इस तरह अपने जीवन को बर्बाद करते हैं लोग देखने वाले वास्तव में। अरे देखना है स्पोर्ट्स खेल को तो श्री कृष्ण का देखना चाहिए, भागवत में सब दिया गया लिखा हुआ। तो भगवान युद्ध करते करते खेल करते करते थक जाते हैं। जब थकते हैं उनके लक्षण को गोप सखा जान लेते हैं कि कृष्ण थका हुआ है, तो तो वे बहुत सी सज्जा लगाने लगते हैं, हमारे सज्जा पर कृष्ण विश्राम करेंगे, हमारे सज्जा पर, और सज्जा का वृंदावन के पत्तों को तोड़ करके, फूल को तोड़ कर और कुछ कोनों को और घास को लाकर तुरंत सज्जा बनाते हैं। कुछ पल्लव तल पेशु, पल्लव तल पत्तों के तल पर बेड पर श्री कृष्ण को सुलाते हैं बहुवचन में। इसका अर्थ है कि दो चार बच्चे मिल करके एक बेड लगाते हैं तो उधर दो चार एक लगाते हैं और श्री कृष्ण सभी बेड पर सोते हैं, सभी सज्जा पर सोते हैं और दूसरे बच्चों को पता नहीं है कि उधर भी कई सज्जाओं पर सोया हुआ है। भगवान इस तरह अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, सब सबकी रुचि रखते हैं, कृष्ण में सामर्थ्य है। तो बहुत सी सज्जाओं पर उस विश्राम करते हैं जो पल्लव के बनाए हुए नए नए पत्तों के की सज्जाएं बनाई गई है तो सोते हैं। और किसी गोप के गोद में अपने सिर को रख करके सोते हैं, विश्राम करते हैं, दिन के समय सो नहीं जाते हैं, इस तरह थकावट जो करते हैं। पाद संवाहन चक्रो के चित महात्मा, कोई कोई महाभाग्यवान सखा भगवान श्री कृष्ण का पाद संवाहन करता है, चरण दबाते हैं। पाद संवाहन चक्रुप के चित्त महात्मा अपरे हथ पात्मान भेजने ही समझ दीजिए, कोई कोई चरण दबाते हैं अलग अलग सज्जाओं पर, चार पांच सेवा कर रहे हैं तो कोई कोई सखा चरण दबाते हैं, कम से कम दो या चार सखा चरण दबाते हैं। चरणों में कोई ऊपर का भाग दबाता है, कोई नीचे का, एक चरण में तो दो लगेंगे और दूसरे चरण में दो चार, कोई बाह दबाता है भगवान को, कोई सिर सहलाता है, कोई व्यजना ही समुद्री जन, कोई पंखा से हवा करता है, और पंखा कहाँ, कोई इलेक्ट्रिक फैन नहीं है वहाँ, वृंदावन के पत्तों का पंखा बना रहता है, तुरंत तोड़ते हैं वृक्ष के पत्ते को और पंखा करने लगते हैं। सबके लिए हथ मानव हथ पात्मा शब्द का प्रयोग किया गया, हथ पात्मान जिनका सब कुछ पाप नष्ट हो गया है, अथ महाभाग्यवान महापुण्यात्मा इस तरह से सेवा करता है। अथवा हत पात्मा का एक अर्थ है तो सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, कृष्ण को जो थका देते हैं ये खेल कूद में और युद्ध में हरा देते हैं तो इसी को पाप कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हत पात्मा और जो सेवा करते हैं उनका अपराध दूर हो जाता है, वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी परम पुरुष भगवान हाथ है और गिर जाए और सो रहे थक करके तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे अनुभव करते थे कि हमने अपराध किया, हमने कृष्ण को थका दिया, कुछ चरण दबा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, सिर सहला रहे हैं, हाथ को संवाहन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा महसूस हो गया है अब हमारा अपराध दूर हो गया है, कृष्ण को सुख दिया, कृष्ण की सेवा की, यदि युद्ध में परास्त करना यह भी कृष्ण की सेवा ही है और कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं कि अब हमारा पाप दूर हो गया। ये सुखदेव गोस्वामी कैसे कह सकते हैं कि उनका सारा पाप दूर हो गया, अरे ये तो बहुत पहले की बात है, कोई पाप है ही नहीं, दूर क्या होगा, क्या हथ होगा। यहाँ पाप का अर्थ है श्री कृष्ण को थका देना और हत पात्मान का अर्थ है कृष्ण को सुख देना, सुख दोनों तरह से दे रहा है, केवल गोप सखाओं के मनोभाव का वर्णन किया जा रहा है कि हमने अपराध किया ये किया, कि वास्तव में उन्होंने अपराध नहीं किया, तो कृष्ण को सुख दे रहे हैं, यही उनका जीवन है। ये हत पात्मान सब जगह लगेगा। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः शनैः, और अन्य महाभाग्यवान सखा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए, विश्राम के लिए उस लीला के अनुरूप मधुर मधुर स्वर से शनैः शनैः धीरे धीरे गाने लगते हैं। आराम में गीत गाना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गाना चाहिए, समय है मंद स्वर से और उनके लीला के अनुरूप गाते हैं, गाते हैं। जब सुलाना होता है भगवान को तो गीत गाया जाता है, नैना नींद भरी आई बिहारी जी के, नैना नींद भरी आई, वो बच्चे गाते हैं सकारात्मक, किसकी आंख कैसी है, इसका मुंह कैसा है, थक गया है, सो रहा है, पदम रूपाण उस लीला के अनुरूप गान कर रहे हैं। और गान कैसे कर रहे हैं, स्नेह क्लिंग भी कृष्ण के प्रति अक्सर स्नेह से इनकी जो बुद्धि है, मन है, क्लीन है, द्रवित हो रहा है, अर्थात इनको थोड़ी थोड़ी रुलाई जैसी आ रही है आनंद में, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के थकावट को दूर करने के लिए गा रहे हैं उस लीला के अनुरूप। ध्यान रखना चाहिए कई सज्जाओं पर कृष्ण लेटे हैं। अब श्री सुखदेव उसमें गाते हुए कहते हैं, एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्म जत्वं चैते विडंबयन रे मे रमालालित पाद पल्लव ग्राम्यं ग्राम्यही समं ग्राम्यवदेशते स्थितः। श्री सुखदेव गोस्वामी लीलाओं का वर्णन करके कहते हैं एवं इस प्रकार श्री कृष्ण निगूढ़ात्म गति है, आत्मगति अपने ऐश्वर्य को अपने ईश्वरताई को छिपा लिए हैं, गोपात्म जत्वं चरित्र विडंबयन अपने चरित्र से अपनी बाल लीलाओं से ये गोपात्म जत्वं विडंबयन गोप बालक की लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं, दो चार चंद लगा रहे हैं। भगवान को देखने वाला यही सोचेगा कि ये सचमुच एक गोप के पुत्र है, अपना ईश्वर छिपा करके आत्म स्व माया अपनी योग माया से अपनी स्वरूप शक्ति से अपने प्रभाव को तेज को और ईश्वरताई को छिपा लिए और केवल प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं। गोपात्म जत्व गोपात्मज गोप नंद महाराज और आत्मज तस्य भाव गोपात्म जत्व गोप बालकत्व को ही प्रकट कर रहे हैं अपने चरित्र से। विडंबयन द एक मान्यता तो विलंबयन विलंबयन का अर्थ है श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं वास्तव में गोपात्मज हूं। भगवान के वास्तव में यही स्वरूप है, वे गोप पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं और गाय चरणन का नित्य का काम है, यही वास्तविक स्वरूप है भगवान का। जो परम पुरुष स्वयं भगवान है वो वास्तव में गोप है। विलंबयन विलंबयन का अर्थ स्थिर करना, ये उनकी नित्य लीला है, यह भक्तों के हृदय में बसाने के लिए विविध चरित्र से ये अपने गोपात्म जत्व को स्थित कर रहे प्रकट कर रहे हैं। और लेने रमा लालित पाद पल्लव जिनके चरण कमल का संवाहन से दाधा नामी करती हैं, ये श्री लक्ष्मी जी जिनके चरण को हमेशा दबाती रहती हैं, लालन करती हैं, चंदन लगाती हैं, कई तेल लगाती हैं और पाद संवाहन करती रहती हैं, पूजा करती हैं, उन्हीं चरणों से भगवान वृंदावन में घूम रहे हैं। रेमे रमा लालित पाद पल्लव जिनके चरणों की सेवा श्री जी करती हैं, रमा करती हैं, ऐसे प्रभु हृदय में इस प्रकार से लीला करते थे, युद्ध की लीला, नाचने की लीला, गाने की लीला, थकावट की लीला, भय की लीला, इस प्रकार वृंदावन में विहार कर रहे थे। रेमे का अर्थ भगवान आनंद लूट रहे थे, सुख लूट रहे थे, वृंदावन उनको भी सुख देता है, सुख घन भगवान को भी सुख देता है। रे में रमा लालित पाद पल्लव ग्रामीण सम ग्रामीण में तो गांव में रहने वाले बिल्कुल मैटरियलिस्टिक लोगों की तरह, विषयी लोगों की तरह भगवान रह रहे हैं। गोपात्म जब तुम ग्रामीण का अर्थ गवार, ना समाज बिना पढ़ा लिखा आदमी गाय बकरी चराने वाला, और बच्चों के साथ भी ऐसी ऐसी लीला करते थे। ग्रामीण सम ग्राम्यवत इष्ट ग्राम्य बालकों के साथ बिल्कुल ग्राम्य बालक की तरह लीला कर रहे थे, पर इस चेष्ट पर कभी कभी वे दिखाते थे ईश्वर की चेष्टा करते थे, कभी कभी प्रकट करते थे। इस समय बच्चों को संदेह होता था, उनको लगता है कि साक्षात भगवान है,
ये शंकर जी का अवतार है या भगवान विष्णु का अवतार है, वो लोग इतना तो कभी कभी ले जाते थे भगवान पे, ज्यादा से ज्यादा चढ़ाते थे तो कहते थे लगता है कि ये देवता है, ये कृष्ण बलराम, ये शंकर जी और भगवान विष्णु है, ये विष्णु या शंकर, ऐसे कृष्ण के लिए विष्णु कहते थे और श्री बलराम जी को शंकर जी कहते थे, ये दोनों आए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़के विष्णु और शिव जी हैं, ज्यादा बढ़ाए तो देवता तक बढ़ाते हैं, वो भी थोड़े देर के लिए, बाद में तो सोचते नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो हमारा सखा है, हमारा जूठा छीन करके खाता है, कल ही तो हम इसको पटक दिए थे बगल में या हरा दिए थे, हमको कंधे पर लेकर के धोया था, घोड़ा पटा था, ये कैसे भगवान हो सकते, शिव जी नहीं, ये विष्णु भगवान नहीं, इस तरह से अस्थिर यही सिद्धांत करते थे। भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपा करके लीला कर रहे थे, पर कभी कभी इस चेष्ट कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट करते थे। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी अब ऐश्वर्य की लीला कर रहे हैं, गोपाल के जब तो गोपाल की लीला कह करके अब कैसे कृष्ण ईश्वर की लीला करते हैं, ऐश्वर्य प्रकट करके इसको कह रहे हैं। श्री दामा नाम गोपालो राम केशव सखा, शुभला स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेम गवान। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के बहुत प्रिय सखा थे और भी थे, एक का नाम था श्री राम, नाम है ऐसा कहें क्योंकि भगवान की नित्य लीला में भगवान के सखा है, तो श्रीदाम ये राधा रानी के भाई हैं खास, श्रीदाम नाम के गोपाल और सुबल तथा स्तोक कृष्ण, और भी कुछ सखा जैसे अर्जुन ऋषभ तेजस्वी आदि, ये सब आए श्री कृष्ण के पास और बलराम जी के पास, और आ करके प्रेमणा इदम अब्रवीत, प्रेम से आकर के यह बोल रहे, प्रेम से बोल रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ कह रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण का नाम बढ़ाने के लिए वे कह रहे हैं, अपने सुख की वासना नहीं है सखाओं में, प्रेम शब्द बता रहे, प्रेमरा इदम अभ्रवत, प्रेम से यह बात कहे कृष्ण बलराम, क्या कहे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अविदूरे महत बनम तालालि संकुलम। आकर के सबसे पहले बलराम जी को संबोधित किए, हे राम हे राम, बलराम जी को राम कहते हैं, हे राम सुनो, मतलब बलराम जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दो बार भिक्षा प्रयोग करते हैं, सुनो हमारी बात को, हे राम महाबाहो, तुम्हारी बाहें बहुत बलवान है अर्थात तुम बहुत बड़े वीर हो, तुम्हें वीरता का काम करना है इसलिए संबोधन कर रहे हैं महाबाहो, और श्री कृष्ण को कहते हैं दुष्ट निबर्हण, दुष्टों की सफाई करने वाले कृष्ण, अथवा दोनों के लिए दोनों शब्द हो सकता है, महावीर कृष्ण के लिए और दुष्ट निवारण कृष्ण के लिए, और बलराम जी के लिए भी महाबाहो और दुष्ट निवारण। हे कृष्ण तुम सदा दुष्टों का नाश करते हो, और हे बलराम तुम्हारी बहुत सुंदर बलवान भुजाएं हैं, तुम्हें बहुत पराक्रम है, ये कहकर के कहते हैं। यहां से थोड़ी ही दूर पर, अब दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर एक वन है, जो वन ताल वृक्षों की श्रेणियों से भरा है, ऐसा वन है जिसमें ताल के बहुत वृक्ष हैं, ये बच्चे कहने लगे अकस्मात, और कह रहे हैं कृष्ण और बलराम को सुख देने के लिए और उनका जश बढ़ाने के लिए। तो यहां से थोड़ी दूर पर एक वन है जिसमें ताल के वृक्ष बहुत है, अर्थात ताल वन, यह ताल वन आज भी है, वृक्ष सब नहीं है उस तरह से, लेकिन स्थान को ताल वन कहते हैं। तो बच्चे उस समय गाय कहाँ चला रहे थे, आपने सुना कि मानसी गंगा जी के तट पर गोवर्धन की घाटी में चला रहे थे गाय, वहीं पर बच्चे जुट करके कहे, तो वहां से एक योजन दूर पड़ता है पूर्व दिशा में ताल बन, चार कोश की दूरी पर, एक योजन का चार कोश होता है, मतलब 8 माइल, और मथुरा से भी वो उतनी ही दूर पर है तालबन, वो भी एक योजन है, ठीक बीच में तालबन पड़ता है गोवर्धन जी और मथुरा जी के बीच में। तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है तालबन, ये कहना क्या चाहते हैं, ऐसे आकर के भूमिका बना रहे हैं, इनके गीता का वर्णन करके कहते हैं यहाँ से एक थोड़ी ही दूर पर एक वन है जहाँ ताल वृक्ष बहुत भरे पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण सुनने लगे, बहुत स्नेह से सुन रहे थे, उपेक्षा नहीं करते हैं कभी भगवान अपने सखाओं की बात, बलराम जी बहुत प्रेम से सुनने लगे। तब बहुत ताल के वृक्ष हैं वन है तो क्या कहना है, तब कहते फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानी च, संत किंत अवरुद्धे न अवरुद्धानी धेमुके नजर आत्मना। ऐसा है कृष्ण सुनो बलराम, वहां खूब फल पड़े हैं, कुछ तो गिरते रहते हैं, कुछ ऑलरेडी गिरे हुए हैं, पहले से ही गिरे हुए हैं, गिरते रहते हैं, इसका मतलब कि ताल वृक्षों में फल पूरा पूरा पक गए हैं, तो पक पक करके कुछ तो गिर चुके हैं, पतित ना और कुछ वर्तमान में पतन होती गिर रहे हैं, अभी अभी गिरते हैं, कई वृक्षों से फल ऐसे गिरते रहते हैं, पतंती पतता नीचा, ये फलों के पक्वता का निर्भर करने के लिए बात कर रहे हैं, फल पके हुए, तो फल पके हुए अच्छा है, तो इसका मतलब कि तब खाना चाहते हो ना, खाने की इच्छा है तो जाओ ना करके फल खाओ। बच्चे कहते हैं समति, कुछ तो गिरे हुए हैं और कुछ गिर रहे हैं, बहुत सुंदर फल, लेकिन दुरात्मा धेनु के द्वारा अवरुद्धन, दुष्ट धेनुकासुर के द्वारा वे सारे फल अवरुद्ध है, किसी को वहां जाने नहीं देता है, कोई आदमी जाता है तो उसी को खा जाता है, तो कोई जाता ही नहीं है वहां पर, इतने फल पके हैं सब, और भगवान ने वास्तव में बनाया है फल खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग इस संसार में धेनु के अंश हैं जो फलों को रिजर्व कर लेते हैं, खाने नहीं देते, दाम बढ़ा बढ़ा कर बेचने के लिए, सारी दुनिया में देख रहे फल भगवान ने पैदा किया है, किसी का बाप पैदा नहीं किया है, लेकिन किसी न किसी तरह से अपना पेटेंट करा करके कब्जा करके और बस वो बेचते हैं, खाना नहीं देते हैं जनता को। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, 26 जनवरी है इसलिए उनकी कुछ याद करनी चाहिए, तो अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या नियम बनाया, इसके पहले कई राजा हुए जिन्होंने वृक्ष लगाया, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष फल के रोड के किनारे जहाँ तहाँ, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, नहीं फल है खाने से लोग सड़ा गला खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नियम बनाए और झगड़ा करेंगे आपस में फल को, इसीलिए फल वाले वृक्ष रोड के किनारे नहीं लगाना चाहिए, देखिए उनकी बुद्धि। पहले के जो राजा होते थे जैसे अशोक का जी राजा हुए, यहाँ तक कि शेर शाह जी, ये सब लोग बहुत फल वाले वृक्ष लगाए रोड के किनारे, फल के वृक्ष छायेदार वृक्ष, लेकिन इन लोगों ने दूसरा पाठ पढ़ाया, और भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लीडर हुए जो अंग्रेजों के मानस चेला थे, और वो जो कहते थे उसी को मानते थे, ला करके हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति काटा वो विलायती बबूल का बीज छीट दिया चारों तरफ, तो कोई बेसर न लाया, कोई बेहाया ला करके सब रोड के श्रृंगार किया, ये सब दान है भारत के नेताओं का जो अंग्रेजों के वास्तव में चेले थे, कहने के लिए स्वतंत्र हुए लेकिन मानसिक गुलामी करते रहे, ऐसे फालतू चीज। और आप उन देशों में जाइए देखिए कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वहाँ लकड़ी के लिए, भरा हुआ है देश वृक्षों से भरा हुआ, यही इकोनॉमी का आधार है वास्तव में, पूरा देश भरा हुआ है। यहाँ पेड़ काटो काटो काटो, ऐसा लग जब ये हाईवे बना तो दोनों तरफ के वृक्षों को कसाई की तरफ काटा इन लोगों ने, पूरा खत्म कर दिया। न पक्षियों के लिए सहारा रहा, न पशुओं के लिए छाया रहा, न मनुष्यों के लिए कोई भोजन, कुछ नहीं, फिर कोई विचार ही नहीं, बस गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। एकदम विराम हो गया वास्तव में देश रोड के मामले में, कहीं भी कोई छाया नहीं, फल नहीं, पक्षियों के लिए कोई आश्रय नहीं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जनता का, वृक्षों की हत्या, वृक्षों का बिना मतलब की काटा जाना। मैं उस फल पर बोल रहा था कि ब्रज के सखा बेचारे गाय चरा रहे हैं, फ्री प्रकृति के गोद में है, लेकिन ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो आकर के पूरा फल को रिजर्व कर दे, कोई नहीं खाएगा, भले सड़ेगा कोई आकर खा नहीं सकता है, और कोई गाय यहाँ घास नहीं चर सकती। बच्चे कह रहे संत किंतु अवरुद्धानी धैन के लिए दुरात्मना, बहुत फल है, पक रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ गिरे हुए हैं, लेकिन दुरात्मा दुष्ट धनुका से उसको कब्जा किया। तब उसको मार करके खाओ, मान लो बलराम जी कहे या कृष्ण दोनों कहें तो ठीक है, अगर इतना बदमाशी कर रहा है तो उसको मारो और फल खाओ। तब कहते सोते वीर जो असुर हो रहा है ना, हे कृष्ण खल रूप धृत खल रूप धृत, हे बलराम तुमको पता नहीं है वो बहुत बलवान राक्षस है, बहुत बलवान दैत्य। और बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण वह गधा के रूप में रहता है, खर रूप धृत, खर खर गधा, गधा के रूप में रहता है और बहुत बलवान है, और वही एक रहता तो हम लोग 10-20 आदमी मिलकर हो सकता था मार देते, लेकिन और आत्मतुल्य आत्मतुल्य बलई रण्य ज्ञात भी बहुवीर मिलकर, और अपने ही समान बलवान अनेक गद्धों के साथ रहता, सब दैत्य है वास्तव में, इसलिए गद्धा के रूप में रहते हैं कि उनको कोई मार ना पा रहे, ऐसे भी कोई पहचान ना पा रहे। गधा से कोई खतरा नहीं होता है ना, वो तो बेचारा घास खाता है, लेकिन गधे के रूप में रह रहे थे तालबन में सब, और अन्य भी इसके और भी स्वजन हैं, ज्ञाति लोग हैं, गोतिया परिवार, जो उसी के समान बलवान है, और सभी गधा के रूप में रहते हैं, बहुत बलवान है, उसको मार करना बहुत कठिन है हम लोगों के लिए, लेकिन तुम दोनों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। भगवान में बाएं हाथ दाएं हाथ का भेद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए लीला पूर्वक संपादित हो सकता है, उसका वध हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीलाओं को देखे थे कई खलों को मारते हुए, इसीलिए कहे तो जस मिलेगा और दूसरा इसको फल मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि बहुत फलार्थी है, फल खाने में तेज है कृष्ण, इसको फल खाने को मिलेगा। कोई फल है जैसे ताल फल है, अगर स्वाभाविक पक जाए अपनी गति से तो बहुत मीठा होता है, वो भी वृंदावन का ताल फल तो कहना ही क्या। कहना कि बहुत से उसके झुंड हैं, उसके साथी हैं, उनसे पार पाना कठिन है। तो अब इस पर मान लीजिए बलराम जी कहें, भगवान कृष्ण कहें तो ठीक है, बहुत लोग हैं तो तुम लोग जाओ लेकर के फल खाओ कहीं से किनारे से। तो कहते हैं तस्मात् कृत नराहारा भीते निभिरमित्र हम न सेव्यते पशुजन पक्षी संघ विवर्जित। उससे इतना मनुष्य समाज डरा हुआ है, कोई भी जाता है मनुष्य तो पहले उसी को खा जाता है, तस्मात कृत नराहारा, नराहार करता है, मनुष्यों को ही खाता है वो, तो कौन जाएगा उस वन में? मनुष्य अगर एक दो आदमी को खाने का भी इतिहास मालूम चले, घटना मालूम चले, तो कौन जाएगा वहां? कौन ताल फल खाने के लिए अपना जीवन गंवाएगा? तो मनुष्यों को खाता है। इसलिए भीतः निर्भीत तद वनम न सेव्यते, इसलिए भयभीत मनुष्यों के द्वारा तो वन सेवित नहीं है, मनुष्य तो वहां जाते ही नहीं, इसलिए हम लोग तो नहीं जा सकते, हम लोग जा नहीं पाएंगे, वो जाते ही खा जाएगा, और इसलिए मनुष्य वहां नहीं पहुंचते हैं। और पशु गणेश्च विवर्जित न सेव्यते, पशु भी कोई नहीं जाता है, भैंस गाय बकरी कोई भी पशु उधर नहीं जाता, इसमें तो पशुओं को भी खा जाता है, पशुओं को भी खाता बनता है। कितने राक्षस आते पशुओं को खा रहे हैं, ट्रक में लाद लाद करके स्लॉटर हाउस में सब, ये धेनु के ही अंश है वास्तव में, तो जरूरत है कि कृष्ण भगवान उनको साफ कर देते कभी, ये पशुओं को न खा पाते, तो पशु भी नहीं जा रहे तापमान में। और पक्षी संघर्ष चल रहे, और पक्षियों का समुदाय भी नहीं जाता है, यहाँ तक ऊपर आकाश में भी कोई उड़ नहीं सकता था, सीमा में छुपा बन गई थी, और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी खींच करके खा जाते, शूट करके खा जाते, और बेचारे पक्षी कहाँ से ताल फल खाएं और ये खाएं, उसमें कहीं किसी को भोजन नहीं मिलता था, कहीं विश्राम नहीं, कोई जा ही नहीं सकता था, ये हालत। तो फिर भी अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि फल शेष हो गया हो इस समय, तो कहते हैं ना विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभिः च, ताल वन में ताल वृक्षों में प्रचुर फल अभी भी लगे हुए हैं, विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि, और पहले किसी ने उन फलों को नहीं खाया है, लेकिन ये सुरभिः च बहुत स्वादिष्ट फल है, बहुत स्वाद है उन फलों में। श्री कृष्ण मैंने कहा जब खाए ही नहीं हो तो कैसे जानते हो कि बहुत स्वाद है? भगवान तर्क दे रहे, जब कभी खाए नहीं और कोई दूसरा भी नहीं खाया है तो कैसे तुमको पता चल रहा है? तो वे कहते हैं इस सुरभिर गंधो विशु चीनो होती है, तुम जरा सुन करके देखो कुरवाइया हवा चल रही है, और वहां चार कोस दूर से ताल फल की सुगंध नाक में आ रही, सुन सुन करके बता रहे हैं, देखो तुम भी सुन हो हवा लेकर के कितनी जब सुंदर सुगंध आ रही है, तो ये फल कितने स्वादिष्ट होंगे, ये सहज अनुमान होता है तुम्हें। देखो सात सुगंध युक्त हवा आ रही है, ऐसा सुरभि वही गंध, सुरभि गंध का सुगंधित गंध सुगंध अवग्रियत है, हमारे तरफ ग्रहण किया जा रहा है, हम लोग सुन सुन कर बेचैन हो रहे हैं कि कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। नासिका के द्वारा ये गंध अभी लिया जा रहा है, गंध बता रहा है उसके स्वाद को, बहुत स्वादिष्ट फल है, बहुत स्वादिष्ट है। प्रयच्छता न कृष्ण, हे कृष्ण हमको फल चाहिए, हम लोगों को फल चाहिए, हम फल खाना चाहते हैं, प्रयच्छ हमें वो दो, जैसे भी उसको मार करके चाहे जैसे जैसे हमको फल चाहिए, हम फल लेंगे, फल खाएंगे, बच्चे कर रहे थे हम फल खाएंगे, हम खाएंगे खाएंगे, हम फल खाएंगे, हमको फल चाहिए। गंध लोभित चेतसा, वे अपने को कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, बलराम जी से, गंध लोभित चेतसा, हमको फल चाहिए, गंध से हमारा फल खाने के लिए चित लुब्ध है, हमारे जीवन में पानी आ रहा है, हमको फल चाहिए, उसकी गंध से हमें बहुत लोभ हो गया है। बलराम जी से कहना है वांछास्ति महती राम, राम बलराम हमको फल की महती वांछा है, बहुत अधिक वांछा, हम रोक नहीं पा रहे अपने को, हमको फल चाहिए, फल चाहिए। देखे लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो अंत में कहते हैं गम्यताम यदि रोचते, यदि तुम दोनों को पसंद हो कि हमारे फल खाने की इच्छा अच्छा लग रही हो तुमको और फल खिलाना जरूरी है और तुम उचित समझते हो तो गम्यताम चला जाए वहां। देखिए बच्चों का हर जब वो कहते हैं कि वो नर को खाता है आदमी को खा जाता है तो जाने की क्या जरूरत है फिर भी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ही तो जानते हैं, तो जानते हैं जैसे बकासुर को मारा, घासुर को मारा और सबको मारा, पूतना और तृणावत आदि को ऐसे ही मार देगा। इसके सामने आदि भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है नारायण का, कृष्ण के आगे जो ठहरेगा नहीं मारे जाएंगे। और गौए भी चरनी चाहिए ना, बहुत बड़ा क्षेत्र वह गौए प्रवेश नहीं करती थी, गौ को चरने के लिए और पशुओं के और पक्षियों के लिए मनुष्य के लिए बहुत उदार भाव है बच्चों का। लेकिन वे ऐसे नहीं कहते हैं कि सबके लिए अच्छा होगा, वो अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जब अपनी इच्छा कहेंगे तब कृष्ण बलराम जाएंगे। लेकिन अंत में कहते यदि रोचते, यदि तुमको पसंद है तो चलो, हमको तो बहुत लालसा है, हमको तो फल खाने की बहुत लालसा है, लेकिन तुमको यदि अच्छा लगे तो चलो। यह अभी एक बात करने का ढंग होता है, यदि तुमको पसंद है तो चलो। एवं सुहृद वचन श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकित्सया प्रहस्य जगमतुर्गो पैर भृतौ ताल बनम प्रभु। इस प्रकार जब अपने सुहृद अपने मित्रों की बात को भगवान ने सुना ध्यान से, बलराम जी और भगवान कृष्ण जी सुने ध्यान से, तो उन्होंने हंस करके कहा ठीक है हम फल खिलाएंगे, चला गए। लेकिन की इच्छा है तो चला गया। भगवान किस तरह अपने प्रेमियों की इच्छा को पूरा करते हैं, ताल फल खाने की इच्छा हो गई तो भगवान श्री बलराम जी चल रही चले प्रहस्य जगमतु हंस करके चले। ऐसा नहीं कि भार मान करके चलो, कहते हो तो क्या करे चलोगा, ऐसा नहीं, प्रसन्नता से जा रहे थे, खूब खुशी से भगवान जा रहे थे, दोनों प्रभु जा रहे हैं। ताल बनम जगमतु ताल बन गए। वहां जाने के बाद बच्चे तो सब पीछे चल रहे थे तो भय से नहीं, स्वाभाविक ही कृष्ण भगवान आगे चलते ही थे, ये भी गए। और उनकी भावना यह है कि अगर कोई अड़ी गड़ी पर जरूरत पड़ गई तो कृष्ण बलराम की हम मदद करेंगे सब। ऐसा नहीं दोनों को भेंग करके और अपने रह जाएंगे। आजकल के लोग मिलिट्री विभाग के हेड होते हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो फोन करके अपने दिल्ली में बैठे रहते हैं और सुधार सैनिक लड़ते हैं। तो पहले के जो राजा होते थे युद्ध में सबसे आगे वे रहते थे और पूरा युद्ध विद्या में विशारद होते थे, मिलिट्री साइंस में प्रवीण होते थे, तो आगे रहते थे। और आजकल के बड़े बड़े लोग बस फोन द्वारा बात करते, आगे बढ़ते रहो, लाहौर तक बढ़ जाओ, ये करो वो करो ये करो, और अपने दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं रहते। ऐसी घटना घटी थी चाइना ने जब आक्रमण किया था, तो इस तरह से फोन हो रहा था, जानकारी भी दी जा रही थी कि यहाँ तक वो कब्जा किए, यहाँ से मारे, फिर भी उसको डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर जब कृष्ण बलराम को फ्रंट पर भेजा जा रहा है तो सब सखा साथ में जा रहे हैं। यह भी एक बताया जा रहा है कि बच्चे कितने निर्भय हैं दोनों के साथ, उनको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये दोनों मारेंगे जरूर, क्यों धमकासु कहीं नहीं, उसके पूरे परिवार का एक वध करेंगे, चला जाए वन को फ्री कराया जाए गौरों के लिए मनुष्यों के लिए। दोनों प्रभु समर्थ ईश्वर गए, हंस करके जा रहे हैं बच्चों को सुख देने के लिए, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि गंध से हमारा लोभ चित है, तब भगवान को हंसी आ रहे थे, भाई ठीक है इतना लोभ है तो चलो खिला रहे हैं, हंस करके दोनों चले। बलह प्रविश्य, बलराम जी आगे प्रवेश किए, बलह प्रविश्य बाहुभ्याम तालन सम परिकंपयन फलानि पातया नास मतंगदैव औदसा। श्री बलराम जी आगे चले स्नेह बस, श्री कृष्ण को कहे कि तुम भी कोई कर पीछे रहो, उनको चलने दो। बहुत खतरनाक व्यक्ति से भेंट होना है धेनु के साथ। बलराम जी बहुत स्नेह करते हैं कृष्ण के प्रति, तो सोचे इसको आगे नहीं करना है, समझा करके वो कुछ आघात न करते। तो बलराम जी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, परम प्रभु है, समर्थ है, फिर भी स्नेह वात्सल्य रहता है कृष्ण के प्रति, तो उनको पीछे कर दिए, बस काम कर पीछे, वे अकेले बिना भय के प्रवेश कर दिए। बलह प्रविश्य बाहु ध्यान तालन सम परिकंपयन, जा करके अपने दोनों बाहों से कई ताल वृक्षों को एक साथ पकड़ करके और झोलने लगे, झकझोरने लगे। तो फलानी पाते आवास, बहुत से फल को गिरा दिए, झोर-झोर करके गिराए, बहुत जोर से वो जब झकझोरे तो वृक्ष बहुत कांपने लगे, और जब वृक्ष काटते हैं तो फल टक 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 गिर जाते हैं। और श्री बलराम जी ऐसे झकझोर रहे थे कि उनके ऊपर नहीं गिर सकता था, बहुत जोर से ऐसे झटकने के फल बहुत दूर जा रहे थे, इधर इधर बीच में नहीं गिर रहे। बाहु धाम बाहों से पकड़कर झकझोर झकझोर रहे, कोई दूसरे यंत्र से नहीं। फलानी पाते मतंग युवा जैसा ओज से ओज पूर्वक बड़ी फुर्ती से कपा रहे थे, गिरा रहे थे, इसलिए कि आवाज हो और आवाज होने पर धनका से सामने आ रहे। दृष्टांत देते हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे मतवाला हाथी किसी साधारण वृक्ष को या ताल को झकझोर दे पकड़ कर, तो वैसे बलराम जी झकझोर रहे थे और दिखा तो ये रहे थे कि हम ताल वृक्षों को कपा रहे हैं फल गिराने के लिए और ये फल हमारे साथ ही खाएंगे, दिखा रहे थे, इसलिए वो गिरा रहे थे, गिरा रहे। फलानाम पततां शब्दं निशम्यासुरराशभ, तो वह असुर राशभ अभ्यधावत छिटी तलम सनगम परिकंपयन। जब फलों के गिरने का बदबद बदबद शब्द सुना हो तो तुरंत ही अपने आवास स्थान से जो वन के मध्य में था वो दौड़ा हुआ है, उपाधावत स्वनगम छिपी कलम स्वनगम परिकंपन, दौड़ा जोर से छलांग मारते हुए, दो दो पैर पर चलते हैं ना गए इस तरह दौड़ते हैं, दौड़ते हुए चला है, कौन आ गया कौन आ गया, कौन फल गिरा रहा है, तो फल को बिल्कुल रिजर्व किया था, खाने नहीं देता था, कौन फल गिराया कौन गिराया, ऐसा कहते हुए जोर से दौड़ करके आया। जब दौड़ करके वो आ रहा था धनुकासुर, तो वृक्षों के साथ पृथ्वी कांप रही थी अथवा पहाड़ों के साथ पृथ्वी कांप रही थी, इतने जोर की आवाज हो रही थी कि इतना भारी उसका शरीर था कि पृथ्वी में कंप हो रहा था, भूकंप जैसा हो रहा था, पर्वत भी कांप रहे थे उसके चरण रखने से दौड़ते। चार पैर वाले पशु कभी दौड़ते हैं तो दो दो पैर से दौड़ते जाते हैं, देखे हैं कभी कभी चार पैर से दौड़ते हैं, लेकिन कभी कभी दो पैर ऐसे दो पैर मतलब अगला दो पैर एक बार रखते हैं और पिछला दोनों पैर एक साथ रखते हैं, चलते हैं वैसे। धनुकासुर चला आया पृथ्वी को कपा रहा था, धमक से पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। समेत तरसा तत्याग द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम बलि निहत्यवरसिका शब्दम मुंचन परिसरत खलह। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हो खलह वह दुष्ट धेनु, खलय भेदा, खर का अर्थ है गद्दा और खल का अर्थ है बदमाश दुष्ट, तो ल और ल में संस्कृत में भेद नहीं माना जाता, खर चाहे खल तो सुखदेव गोस्वामी कहते हुआ खल यवा सुनक समेत तरसा तुरंत आकर के और अपने प्रत्येक द्वाभ्याम पदाभ्याम वायर जोर से और श्री बलराम जी को देखा, देख करके वो निकट है, निकट आकर के तुरंत फिर पीछे मुड़ गया, मतलब उनके तरफ मुंह हटा करके उधर कर लिया और झुलती मारा उनके छाती में बहुत जोर से ऐसे देखो समय ऐसे मन करते आया आया बड़ा उनका तुरंत मुड़ गया उनके तरफ अपना पिछला पैर करके और मारा। गधों की दुलती बहुत प्रसिद्ध है तो गधा के स्वरूप में था, शरीर में था, इसलिए वो इसी तरह से मारा श्री बलराम जी को समेत समय तो बिल्कुल निकट आकर के तरसा बड़े वेग से प्रत्येक द्वाभ्याम पदाभ्याम प्रत्येक करके पीछे ले पिछले दोनों पैरों से निहत्य। तो बलराम जी के लिए बलम शब्द कहा जाता है, बलवान बलराम जी को बलि धनुकासुर ने मारा, बलम बलि बलि मतलब बल वाला, धनुकासुर भी बहुत बलवान राक्षस था, उसने बलराम जी को मारा। कहाँ मारा? उरसी ऐसे अपने दुलत्ती को मारा कि बलराम जी के छाती में लग गया और छाती में लगेगा तो लड़का यहीं बात जाएगा। थोड़ी भी दया नहीं आ रही थी, इतना सुंदर लड़का आया, मानो जो फल गिरा रहा था, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है और कितना खाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक फल खा कर तृप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा फल होता है। लेकिन वो तो समझा नहीं इनकी महिमा को और आया मारने के लिए और निहत्त उरसी का शब्द का बोला, गधा जैसे रेखते हैं गधा जाति का शब्द किया मार करके वो लगा नहीं बलराम जी पर, बलराम जी ने वंचित कर दिया अपने, लगा नहीं लेकिन अपनी ओर से दुलती जोर से मार करके गधा जैसे शब्द बोला, गधा जाति जैसे बोलता है रेखता है से रेखा सफलता सूचित कर रहा था और अपना आनंद व्यक्त कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपना आनंद तो अपने स्वर में ही व्यक्त करेगा ना, तो गधा था तो गधा जैसा रेखा गर्दभ जाति का स्वर किया मार करके। और इसके बाद पर यह सरब और भाग्य दूर, क्योंकि पहले से वो जानता था कि ये लड़के भी कोई साधारण नहीं, बहुत खतरनाक है, मैंने मारा है घासुर को किसको किसको। तो पर शरत का अर्थ है कि दूर भाग, दूर हट गया, मार करके दुलती और दूर भागती। इसके पहले वो सुना था कि वत्सासुर का वध किया गया तो उसकी टांग पकड़ करके घुमा दिया मर गया, इसीलिए दूर भागा, कहीं लड़का पकड़ ना ले। वत्सासुर को तो भगवान कृष्ण ने मारा था तो दूर हो गया। और इसके बाद पुनरासाध्य संलब्ध उत्कृष्टा पराकृष्ट चरण अपरव राजन बलाय प्रक्षिप दुषा। इसके बाद फिर चला, अथवा दूर चला गया फिर मोशन बनाने के लिए अपने चाल में, फिर उधर से चला वेग से। अब ये पैर तो लगा नहीं इसलिए उसका क्रोध और बढ़ गया, तो फिर जा करके दूर और चला जोर से, और जोर से चल करके तुरंत फिर पिछला पैर बलराम जी के तरफ किया, प्रतिमुख हो गया। और इसके बाद मारा दुलत्ती, जैन ही मार पराकर्षित पीछे पीछे होकर के मारा बलराम जी के लिए, मतलब बलराम जी का वध करने के लिए बलाय प्राक्षिप दुषा क्रोध में मारा अपने दोनों पैरों को। लेकिन महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे सुखदेव गोस्वामी जी, चरण अपरव राज अपर का अर्थ पिछला, ये पिछले पैर को बलराम जी के लिए मारा। सप्तम गृहीत्वा प्रमत प्रपद और भ्रामित्वैक पाणिना। श्री बलराम जी ने क्या किया, जब मारा दुलती जोर से तो श्री बलराम जी ने अपने एक हाथ से बाएं हाथ से, यदि भगवान बलराम जी के हाथ में बाएं दाएं का भेद नहीं लेकिन लोक में दिखाने के लिए बाएं हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके घुमाने लगे जोर से, वो घुमाने में ही मर गया, इतना जोर से भगवान ने घुमाया कि वो मर गया। तो भ्रमित्वा एक पाणी ना, एक पाणी से उसके प्रपद दोनों पैर को पकड़ दिए। देखिए भगवान बलराम जी का अश्वत्थ, यह बहुत भारी अश्वत्थ प्रकाशन नहीं है, परंतु छोटा सा बच्चा इस तरह का काम करे ये आश्चर्य की बात। इतना वेग से पैर मारा था लेकिन आते आते उसको पकड़ लिया, पकड़ करके घुमाने लगे। सतम गृहित्वा प्रपद हो भ्रामी तय पाना चित क्षेत्राज अग्रे भ्रमण त्यक्त जीवित, घुमाने से मर गया, भ्रमण त्यक्त जीवित, घुमाने से ही उसका जीवन समाप्त हो गया। तो उसके उस निष्प्राण देह को श्री बलराम जी ने एक तृण राजा ग्रह ताल को तृण कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये तृण माना जाता है, वृक्ष नहीं है, तृण है, बड़ा लंबा तृण। उस तृण के अग्र भाग पर जहाँ फल और उसके पत्ते रहते हैं वहां पर श्री बलराम जी ने मारा जोर से, इतना जोर से मारे उस वृक्ष का अगला, उस तृण राज का ताल का अगला भाग बहुत फैला होता है वो टूट गया और वो गधा के शरीर को लिए दिए वो दूसरे ताल वृक्ष पर गिरा, वो टूट गया, उससे वो टूटा, उससे वो टूटा, इस तरह चारों वृक्ष टूट गए एक बार मारने से। यह है भगवान की शक्ति। सुखदेव को स्वामी इस तरह से वर्णन करते हैं, चिक्षे पर तृणराज आ गए, तो ताल के वृक्ष को तृणराज कहते हैं, घास में सबसे बड़ा घास जत्री में तो टूट गया। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खर्गे हता हता तालाश्चकंपी सर्वे महावातेरिता नृप महावातेरिता युवा। श्री बलराम जी ने जब उस मरे हुए दैत्य देह को मारा ताल वृक्ष पर और लीलया उत्सृष्ट लीला पूर्वक फेंके, बहुत जोर लगा करके बलराम जी नहीं फेंके, ऐसे उसको पकड़े और घुमा करके खेल खेलने से फेंक दिए, उसी से वो ताल वृक्ष झकझोरा झकझोर दिया गया और टूट गया। तालस चकंप के सर्वे महावातेरिता युवा, इसके पहले तेना हतो महातालो वेद मानो बृहद शिरा पार्श्वस्थम कंपयन भवन सच्चानंद से पिछा पर। जब श्री बलराम जी ने धनुकासुर के उस मरे हुए देह को फेंका ताल वृक्ष पर, उस मरे हुए धनुकासुर के देह से मारे जाने से वो महाताल बहुत बड़ा ताल वृक्ष का वेग मान कांपने लगा, बृहद शिरा उसका सिर बहुत बड़ा था, फैला हुआ था, पार्श्वस्थम कंपयन भगवान, वो तो टूट ही गया, उसका सिर टूट गया और पास के वृक्ष को वो कंपाया तोड़ दिया, फिर वह उसने दूसरे को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा, इस तरह से हजारों वृक्ष वहां टूट गए। पार्श्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यम सोपी चापर, उस ताल ने दूसरे को गिराया, दूसरे ने तीसरे को गिराया, इस तरह से ऐसा लग रहा था लीला पूर्वक धनुकासुर के देह को उन्होंने फेंका, खेल खेल में फेंका, लेकिन उसके चलते सर्वे तालस चकंपी रहे, सभी ताल वृक्ष कांप गए और गिर गए, जैसे लगा कि महा आंधी आई हो, तूफान आया हो और तूफान इन वृक्षों को गिरा दिया हो। ऐसे श्री बलराम जी ने धनुकासुर के देह को ताल पर मारा और उस ताल के झकझोर में सारे ताल वृक्ष गिर गए। महावात ईरिता युवा, महावात कहते हैं प्रचंड आंधी को या साइक्लोन को, तूफान को, जैसे वो वृक्षों को गिरा देते, इस तरह से बलराम जी के खेल खेल में फेंके हुए धनुकासुर के देह के द्वारा सारे ताल वृक्ष गिरा दिए और वो तो मर ही गया, मतलब उसी का मरा हुआ देह फेंका गया। नैतचित्रं भगवती जनन्ते जगदीश्वरे उत प्रतिदम विश्व तंतु स्वंग यथापट श्री परीक्षित महाराज चकित हो रहे थे। अच्छा ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी कहते न चित्र भगवती हिनंते जगदीश्वर जो जगत के ईश्वर हैं जिनके बल आदि की कोई सीमा नहीं जो अनंत है उनके लिए ये कोई आश्चर्य का काम नहीं है आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने एक बल को पूरा पूरा एक दैत्य के देह द्वारा ध्वस्त कर दिया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सारा विश्व श्री बलराम जी में उसी तरह से गुथा हुआ है उनके आश्रित है जैसे कोई पट साड़ी या धोती सूत्रों में गुथा गया है अनेक सूत्र मिलकर के ही साड़ी बन जाते हैं कपड़े बन जाते हैं। इस तरह श्री बलराम जी में सारा संसार बस रहा है उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञातो धेनुकस्य कृष्टारभ्य द्रवन सर्वे सम्बद्धा हतबान्धवा जब धेनुकासुर का वध हो गया तो उसके जितने भी संबंधी थे परिवार के खास लोग या ज्ञाति मित्र आदि और सब गधा के रूप में ही रहते थे। एक आश्चर्य की बात है जब लीडर गधा का रूप बनाया है तो सब गधे के ही रूप में रहते थे गधा के रूप में थे और देखे कि उनका मेन मालिक मार दिया गया बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के वो सब एक साथ आक्रमण किए। श्री बलराम जी से तो डर लग रहा था उन लोग भय लग रहा था इसलिए उनको बाद पहले कृष्ण पर टूटे सब तो छोटे भाई को मारो 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 इसलिए श्री सुखदेव को समय कृष्णम शब्द पहले कह रहे हैं। पता कृष्णम च रामम च कृष्ण को और राम को चकार से उनके साथियों को मारने के लिए सारे राक्षस टूट गए गधे के रूप में आए थे और जैसे धनुकासुर ने आघात किया था तो उसी तरह से आघात करना चाहते दुलत्ती मारने के लिए आ गए श्री कृष्ण को बलराम जी को और उनके सखाओं को मारने को सब एक साथ जुटे नहीं एक साथ आक्रमण करेंगे तो जीत जाएंगे इसलिए सब एक साथ आए। ततः कृष्ण रामश्च निर्पलीलया गृहीत पश्चात चरणान प्रायः जैसे वे लोग गधा के रूप में आए और दुलत्ती मारे तो भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी और चकार से जितने भी सखा थे अपने पर आघात करने वाले गधों के चरण को पकड़ते थे चरण को पकड़ करके और उसी तरह जैसे बलराम जी ने घुमाया था ऐसे घुमा घुमा करके और बचे नेताल वृक्षों को मार रहे थे। बलराम जी ने काफी गिरा दिया था लेकिन जो बचे थे उस पर ये लोग मारने लगे ये खेल कर रहे थे बच्चे भी तो छोटे छोटे बच्चों और उन सखाओं के साथ तो जो छोटे छोटे गद्दे थे वे आ रहे थे मारने के लिए और बड़े बड़े जो गद्दे थे वे कृष्ण को और बलराम जी को मारने आ रहे थे और यही लीला लोग करते थे ऐसा नहीं ताल वृक्ष लेकर पटक दो ऊपर एक डंडा से मारे यही बस चरण पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर मर जाते थे और उनको ताल वृक्ष को फेंकते वो तुरंत आते थे। तो ये बहुत बड़ी लीला है जितने सखा थे वे सब भी गधे घुमा घुमा कर पटक रहे थे श्री बलराम जी श्री कृष्ण और इस तरह से सबको मार दिया गृहित पश्चात चरण पिछले पैर को पकड़ पकड़ के प्राण तेड़ राज से और ताल वृक्षों पर ही फेंकते थे। लीला जो बलराम जी ने किया था भगवान को भी यही अच्छा लग रहा था और गोप सखाओं को भी यही अच्छा लग रहा इसी तरह से सब बात करते थे। फल प्रकर संकीर्ण दैत्य देह गताज भूषता लग रहे घमय दिवस नभस्तलम श्री सुखदेव गोस्वामी अब वीडियो कैमरा से फोटो ले रहे ताल बन का देखिए कहते हैं जैसे बादलों के घिरने पर आकाश सुंदर लगता है वैसे ताल बन की भूमि बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि फल चारों तरफ गिरे थे पीले पीले पीत वर्ण के लग रहे आरूर वर्ण के लाल लाल फल गिरे थे सब जगह और दैत्य देह गधे से उजले वर्ण के थे जिने वर्ग गधे थे श्वेत थे, तो वो सभी भिन्न प्रकार के बादल जैसे लग रहे थे, जैसे आकाश में एक ही साथ है अरुण श्वेत और नील बादल छा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आकाश उसी तरह से ताल बन की भूमि बहुत अच्छी लग रही थी। मरे हुए गधों के देह पड़े थे और ताल वृक्ष गिरे थे और ताल फल गिरे थे, तो इनसे वो भूमि बहुत अच्छी लग रही थी। ताल वृक्ष जो थे वे तो नील बादल जैसे लग रहे थे, नील काला होता है ना ताल वृक्ष, और पके हुए फल थे लाल लाल, और गधे सब व्हाइट थे श्वेत बादल। ऐसा लगता था जैसे आकाश में अरुण श्वेत और नील बादल छाते हैं, वो अच्छा लगता है। इसी तरह से ताल बन कच्छे थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी को देखिए इतने गधे मरे हैं, उनकी जान गई है, अरे कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था भूमि राजा भू, तो भूमि अब सुंदर लग रही थी, तो खतरा तो चला गया, सबके लिए सेवनीय हो रहा ताल बन, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तयस्तत्सुमहत्कर्मा निशमय विबुधादय नुचु पुष्प वर्षाणी चक्र लाद्यानित स्तूल। कृष्ण बलराम के सुमहत कर्म को देखकर देवता आदि सब विबुध आदय, देवता गंधर्व विद्याधर आदि ये लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे कृष्ण बलराम पर और उनके सखाओं पर, इस महत कर्म की प्रशंसा कर रहे थे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, बाजे बजाने लगे। बाजा से ये उपलक्षण है, गीत गाने लगे, जस गाने लगे और नाचने लगे देवता लोग, देविया अप्सराएं नाचने लगे, और तुष्ट स्तुति करने लगे ऋषि जन, देवता दे स्तुति करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। अथ ताल फला न्यादन मनुष्य गत साध्व सह, और अब मनुष्यों का भय चला गया, गौओं का भय चला गया, पशुओं का भय चला गया, वे सब ताल फल लगे खाने उस दिन से। अथ ताल फलानी आदन मनुष्य गत साधस, साधस में भय, उनका भय चला गया, कोई डर नहीं रहे, अब खुल करके आ करके ताल फल खाना फ्री वो कर दिया बलराम जी ने, ताल वृक्ष ताल फलो सब खा रहे थे। और तृणम च पशुस चेल, और गाय भैंस आदि पशु ये सब तृणम चेल तृण चरने लगे, वे घास खाने लगे, मनुष्य सब फल खाने लगे। यहाँ मनुष्य सब दिया गया, ये नहीं कहा गया कि भगवान के पार्षद गोप सखा फल खाने लगे, वो लोग तो ऐसे कह रहे थे कि फल खाना है खाना है, लेकिन सब जगह गधा मरे पड़े हैं, वो भी फल नहीं खाए, गधा का तो छुआ हुआ भी नहीं खाते हैं, वो मरे हुए देह जो सटा हुआ फल कैसे खा सकते, वे नहीं खाए। बल्कि भगवान कृष्ण बलराम जी गम कर रहे थे बच्चों पर, तो फल खाने को कह रहे थे तो खाओ, अरे राम राम ये फल खाए फल वो नहीं खाए, इसलिए मनुष्य शब्द का प्रयोग, मनुष्य मतलब कोल भीड़ जो वन में इधर उधर रहते थे ताल बन के बाहर, उन सबको पता लगा कि धनुकासुर मर गया, तो ये लोग आया करके फल खाना चाहते थे। ये अर्थ है भगवान के सखा इस तरह से अशुद्ध फल कैसे खाए। और गौएं भैंस आदि आकर के तृण चरने लगे, तो निर्भय हो गए, गत साधु सबके लिए प्रयुक्त शब्द, उनका भय चला गया, सबका भय दूर हो गया, और भोजन पशुओं को भी मिलने लगा, अच्छे से मनुष्यों को भी मिलने लगा। तो यह भगवान कृष्ण की और श्री बलराम जी की लीला है, धेनु बधन लीला है, ऐश्वर्य भगवान ने प्रकाशित किया। अब श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण और बलराम तथा सखाओं के वन से लौटने की लीला का वर्णन करेंगे। इस समय हो गया, मैं बहुत टाइम से चल किया था, इसीलिए यहाँ पर वर्णन करता हूँ, और उस लीला को विशेष संध्या लीला कहते हैं, भगवान वन से लौटते हैं, वह गोपियों के लिए ब्रजवासियों के लिए बहुत सुखमय समय होता है। यद्यपि उसका वर्णन तीन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने किया है, और बाद में माता रोहिणी और यशोदा जी के द्वारा की गई सेवा का वर्णन किया। तो इसको मैं कल कहूंगा थोड़े विस्तार से, आज यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।